25। सूरज के आने तक भगवती शरण मिश्र 1982, पृष्ठ संख्या 93। सूरज के आने तक स्वातंत्र्योत्तर काल में हमारे देश के गांवों में जो बदलाव आया उसे रूपायित करने वाला उपन्यास है। इसमें बिहार के बेन सागर और बाजितपुर नामक गांवों के परिवेश को लिया गया है। प्रस्तुत उपन्यास में सरकार द्वारा प्रायोजित प्रौढ़ शिक्षा के कार्यान्वयन की समस्या को लिया गया है। ग्रामीण जीवन में व्याप्त अंधविश्वास, जातिगत ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत की भावना, खान पान के संबंध में जातिगत कट्टरता, धार्मिक संकीर्णता, अंतर जातीय विवाह जैसी समस्याएं भी इसमें आकलित हुई हैं। पृष्ठ संख्या 94। उपन्यास के प्रमुख पात्रों में नूनू बाबा, लाल मोहर, राधा, परियोजना पदाधिकारी मोहम्मद सत्तार, महादेव, नारायण पंडित, देवशरण शास्त्री, गोवर्धन पंडित, निरंजन ठाकुर, मनोहर राय, शत्रुपा बुआ, कमला, रूपा आदि हैं। परंतु जिन नारी पात्रों को इसमें प्रमुखता मिली है वे हैं राधा, शत्रुपा बुआ और कमला। पैराग्राफ चेंज। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से मोहम्मद सत्तार तथा राधा को नियुक्त किया जाता है। गांव वाले पहले तो इसका विरोध करते हैं, परंतु बाद में नूनू बाबा के समझाने पर वे उसके लिए तैयार हो जाते हैं। नूनू बाबा ग्रामीण चेतना के केंद्र के रूप में है। उपन्यास में राधा और लाल मोहर की प्रेम कथा को भी विशेष महत्व मिला है। लाल मोहर अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं है, परंतु नोनू बाबा के सत्संग में बहुत कुछ जानने समझने लगा है। नोनू बाबा मंदिर के पुजारी होते हुए भी पोंगा पंडित नहीं बल्कि सचमुच के पंडित हैं। उनके कारण गांव में सामाजिक चेतना का प्रसार हो रहा है। नोनू बाबा ने मानो गांव में ओपन यूनिवर्सिटी खोल के रखी है। लाल मोहर, महादेव, नारायण आदि उनकी विद्यापीठ के स्नातक हैं। धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, पुराण आदि को लेकर उनका ज्ञान हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी के औसत छात्र से अधिक होगा। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त राधा लाल मोहर के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। पैराग्राफ चीन। मोहम्मद सत्तार राधा को चाहते हैं और कदाचित राधा भी उनसे प्रेम करने लगती, परंतु एक आकस्मिक घटना में लाल मोहर अपने प्राणों पर खेल जाता है और राधा को बचा लेता है। मोहम्मद सत्तार भी वहां उपस्थित थे, परंतु जो साहस लाल मोहर ने दिखाया उसका उसमें अभाव था। सत्तार साहब में राधा के प्रति रूपजन्य आकर्षण था, जबकि लाल मोहर राधा को अपनी आत्मा से चाहता था। नूनू बाबा इन दोनों के प्रेम तथा विवाह पर न केवल स्वीकृति की मोहर लगाते हैं, बल्कि अपनी सारी संपत्ति, 50 बीघे जमीन तथा मंदिर राधा के नाम कर देते हैं। पैराग्राफ चीन। जहाँ हमारे कई तथाकथित साधु संत मंदिर, मठ और उससे जड़ी संपत्तियों के लिए कचहरी मुकदमे करते हैं, वहाँ नूनू बाबा एक सात्विक संत पुरुष की भूमिका निभाते हैं। परंतु नूनू बाबा के इन कार्यकलापों की डोर सत्रुपा बुआ के हाथ में है। नूनू बाबा और सत्रुपा बुआ के रूप में लेखक ने एक आदर्श दंपत्ति का चित्र अंकित किया है। प्रायः देखा यह जाता है कि धार्मिक संकीर्णता, छुआछूत तथा संपत्ति का मोह बनिस्पत पुरुषों के लिए स्त्रियों में अधिक पाए जाते हैं, परंतु सत्रुपा बुआ उसमें अपवाद है। मोहम्मद सत्तार जैसे मुसलमान अधिकारी को भी वह अपने चौके में बिठाकर भोजन करवाती है। पैराग्राफ चीन। उपन्यास का तीसरा मुख्य नारी पात्र है कमला। हरिजन होते हुए भी उसमें आगे बढ़ने की इच्छा बलवती है। सेवा भावना उसमें कूट कूट कर भरी है। पंडित गोवर्धन रूढ़िवादी तथा परंपरागत संकीर्णता के प्रतीक है, परंतु जेल यात्रा के कारण उनके विचारों में परिवर्तन आता है और अंत में वे भी नूनू बाबा के भक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि नूनू बाबा तथा सतरूपा बुआ के कहने पर अपने पुत्र का विवाह कमला से करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। पृष्ठ संख्या 95। इस उपन्यास के संदर्भ में डॉक्टर ईला मिस्त्री ने जो टिप्पणी दी है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। वस्तुतः किसी भी देश या समाज में नेताओं, समाज सुधारकों और साधु संतों की यही भूमिका होनी चाहिए। उन्हें तो बस सूरज के आने तक किसी भांति जलते रहने, तमिश्रा को दूर करते हुए आने वाली पीढ़ी तथा आने वाले सुनहरे आशास्पद कल के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने जीवन काल में अपने समान धर्मा सहचिंतकों की सेकंड कैडर तैयार करने का काम उनका होता है, और उसके तैयार होने पर उन्हें सारा दायित्व उस पीढ़ी पर डालकर अपने मोह का संवरण कर लेना चाहिए। पर क्या हमारे नेता, साधु संत और महंत ऐसा कर पाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ भगवती शरण मिश्र उपन्यास साहित्य शोध प्रबंध डॉक्टर ईला मिस्त्री पृष्ठ संख्या 92। 26 एक टुकड़ा इतिहास गोपाल उपाध्याय 1973 पृष्ठ संख्या 95। गोपाल उपाध्याय द्वारा प्रणीत एक टुकड़ा इतिहास कुमाऊं प्रदेश के डोंग जाति की नारी चनूली के जीवन की एक संघर्षपूर्ण कथा है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह शैलेश मिटियानी कृत नागवल्लरी का विलोम है। नागवल्लरी में जहाँ एक सवर्ण युवती अछूत जाति के व्यक्ति से विवाह करती है, वहाँ प्रस्तुत उपन्यास में एक सवर्ण युवक कांतिमणि डोम कन्या चनूली से विवाह करते हैं। ब्राह्मण युवक कांतिमणि चनूली से विवाह तो कर लेता है, परंतु उसके बाद समाज द्वारा दी गई प्रताड़नाओं, अपमानों, अत्याचारों और अन्यायों से वह टूट जाता है और चनूली और उसके बेटे रतन का परित्याग करते हुए समाज का दंड भरकर अपनी जाति में पुनः प्रवेश पा लेता है। चनूली पर कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक अत्याचार होते हैं, परंतु ये संघर्षपूर्ण यातनाएं ही उसे चनूली से चंदी देवी बनाती हैं। हरिजनों के लिए काम करते हुए वह कांग्रेस के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ती है। यद्यपि चुनाव में वह हार जाती है, तथापि एक दलित महिला नेता के रूप में वह उभरती है। समता आश्रम की स्थापना करती है। सवर्णों द्वारा आश्रम में आग लगाई जाती है, तब चंदी देवी उनके सामने अदालत में मुकदमा दायर करते हुए अपराधियों को सजा दिलवाती है। पैराग्राफ चीन। जब पेड़ गिरने के कारण कांतिमणि के रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तब चंदी देवी उसे बरेली के अस्पताल में दाखिल करवाते हुए जी जान से उसकी सेवा करती है। फलतः मृत्यु से पूर्व कांतिमणि पुनः चंदी देवी और रतन को अपना लेता है और अपनी तमाम संपत्ति उनके नाम कर देता है। चनूली के पुत्र रतन के ये शब्द ध्यातव्य रहेंगे। इन्वर्टेड कमापन ईजा डूम तो आज भी डूम ही रह गए हैं, आज भी वे अछूत है, फिर तूने खामखा अपनी जान क्यों दे दी? ईजा तू नहीं बदल पाई इन लोगों को, मगर ये बदलेंगे ईजा, समय इन्हें बदलने के लिए मजबूर कर देगा, सिर्फ तू नहीं देख पाई कि ईजा तू। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ एक टुकड़ा इतिहास गोपाल उपाध्याय पृष्ठ संख्या 278। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में वर्गीय चेतना तथा प्रगतिवादी दृष्टिकोण का साफ साफ चित्रण हुआ है। वस्तुवादी लेखक प्रवर्तनमान सामाजिक स्थितियों की दीवारों को भेदकर भविष्य को देख लेता है। आजकल भारतीय समाज तथा राजनीति में जो दलित नेता उभर रहे हैं, उनमें रतन के शब्दों की सच्चाई की अनुगूंज हम सुन सकते हैं। 27 नच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर पृष्ठ संख्या 96। जिस प्रकार रांगीय राघव, हिमांशु श्रीवास्तव, गोपाल उपाध्याय आदि लेखकों ने उपन्यास क्रमशः कब तक पुकारूं, नदी फिर बह चली, एक टुकड़ा इतिहास में क्रमशः कर्नट, कहार और डोम जाति की जीवन विभीषिकाओं को चित्रित किया है, उसी प्रकार अमृतलाल नागर ने नच्यो बहुत गोपाल में अछूतों में भी अछूत समझे जाने वाली भंगी ब्रैकेट में मेहतर जाति के जनजीवन का यथार्थ लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। पैराग्राफ चीन। इस उपन्यास में नागर जी ने पखाना धोने वाले तथा मैला ढोने वाले भंगी समुदाय के यथार्थ जीवन का मार्मिक अंकन किया है। प्रस्तुत उपन्यास में निर्गुण एक ब्राह्मण कन्या है, परंतु मोहना नामक एक मेहतर युवक के साथ भागकर वह निर्गुनिया मेहतारनी बन जाती है। जिस प्रकार नागवल्लरी की ठकुराइन कृष्णा मास्टर नामक डोम युवक से विवाह करती है, वहां निर्गुण मेहतर युवक मोहना से विवाह कर लेती है। उसके पीछे उसके व्यक्तिगत जीवन की यंत्रणा है। ब्राह्मण होते हुए भी उसकी माँ उससे पैसे के लिए पेशा करवाती है। उसका जीवन वासना के पंकिल भूमि में डूब जाता है। कच्ची उम्र में ही उसके जीवन में कई पुरुष आते हैं। अंत में एक बड़ी रकम लेकर उसकी माँ उसकी शादी अपनी जाति के एक नामर्द बूढ़े से कर देती है। निर्गुण जिसके जीवन में कई गबरू जवान आ चुके थे, बूढ़े पति मुसरिया दीन के द्वारा कभी संतुष्ट नहीं होती। मुसरिया दीन उसकी दैहिक आवश्यकताओं को पूरा न कर उसे भड़का देता है। निर्गुण जवान है, सुंदर है और कामुक है। मुसरिया दीन बूढ़ा है, अतः वह हमेशा निर्मला के तोता राम की भांति निर्गुण को शंका की दृष्टि से देखते हुए उसे दिन भर कोठरी में बंद रखता है। मनुष्य के नाम पर वह बाहरी समाज में केवल महतारनी को जानता है, परंतु एक बार जब महतारनी छुट्टी पर चली जाती है और उसका बेटा मोहना पखाना साफ करने आता है, तब निर्गुण उसे पटा फुसला कर अपने वश में बना देती है। निर्गुण के जीवन में पहले भी कई पुरुष आए थे, परंतु अपने हृदय के अंतर मन से तो उसने केवल मोहना को ही चाहा था। एक बार निर्गुण का पूर्व प्रेमी बसंती लाल थानेदार जब उसको पूछता है कि सवर्ण होते हुए भी उसने महतारनी होना क्यों पसंद किया, तो उसके जवाब में निर्गुनिया जो कहती है वह मानव जीवन का सत्य है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। जब 12 बरस का अकाल पड़ा था तो भूखे विश्वामित्र ने शूद्र के घर में घुसकर कुत्ते के मांस की चोरी की थी। मुझ अकाल की मारी ने भी अगर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ नच्चू वहद गोपाल अमृतलाल नागर पृष्ठ संख्या 151। पैराग्राफ चेंज। इस पर बसंती लाल उसे डांटते हुए कहता है इन्वर्टेड कॉमा ओपन, चुप करो, शर्म नहीं आती तुम्हें ब्राह्मण के घर जन्म पाकर ऐसी बातें करते हुए। इस पर निर्गुनिया व्यंग की विद्रूप हंसी हंसते हुए कहती है, ब्राह्मण राय साहब पंडित बटुक प्रसाद ऊंचे कुल के ब्राह्मण होते हुए भी खुलेआम मुसलमान रखते हैं। बाद में मेम भी रखी। उनके ऊंचे कुल की ब्राह्मणी घरवाली ने अपने नौकर खंड बहादुर को और ना जाने किन किन नौकरों मोल मालियों और नाते रिश्तेदारों को अपना खसम बनाया था, आपको भी बनाया था। कौन सी जात का आदमी छूटा है उनसे? खुद मेरा बाप भी हर तरह की औरत से अपना मुंह काला करता रहा। निगोड़ा, अरे दूर कहाँ जाए, खुद हमारे दरोगा साहब भी ऊंचे कुल के होकर इस ऊंचे कुल की औरत को नीचे गिराने में कुछ कम बहादुर साबित नहीं हुए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 152। पृष्ठ संख्या 97। इसमें नागर जी ने मेहतर जाति के आर्थिक दैहिक शोषण के कई पक्षों को उजागर किया है। इसमें लेखक ने इस जाति के इतिहास की भी खोज प्रस्तुत की है और उन्हें क्षत्रिय मूल की बताया है। मुसलमानी आक्रमण में युद्धों के दौरान जिन क्षत्रियों को पकड़ा गया उनको अपमानित करने हेतु घृणित कर्म करवाए जाते थे। इस प्रकार महतर से मेहतर शब्द व्युत्पन्न हुआ है। निर्गुण मोहना से विवाह करके निर्गुनिया हुई, परंतु उसके पश्चात भी उसके संघर्षों का अंत नहीं हुआ। मोहना की मामी का उसके साथ का व्यवहार बड़ा अपमानजनक रहता था। वह निर्गुनिया को मैला उठवाने पर मजबूर करती थी। इसके पीछे मोहना की माए के अचेतन मन में ऊंची जाति के लोगों के प्रति जो बैर भाव था वही प्रकट होता था। इसमें निर्गुण का मोहना के साथ भाग जाना, माँ के द्वारा दुत्कारे जाने पर निर्गुण तथा मोहना का मामी के यहाँ जाकर रहना, मामी का निर्गुण के साथ घृणित व्यवहार, मोहना का वहीदा डाकू के गिरोह में शामिल हो जाना, वहीदा के मारे जाने पर मोहना का डाकू गिरोह का सरदार हो जाना, ऊंची जाति के लोगों से बदला लेने के लिए उनकी स्त्रियों के साथ मोहना का प्रतिक्रियावादी व्यवहार, मोहना से निर्गुनिया को निर्गुण मोहन नामक बेटे का होना, आर्य समाज की सहायता से निर्गुण का मेहतर समाज को ऊपर उठाने का प्रयत्न, निर्गुण मोहन का उच्च वर्गीय लोगों के प्रति घृणा, तिरस्कार और बड़बोलेपन का भाव आदि घटनाओं के द्वारा लेखक ने निर्गुनिया के संघर्षपूर्ण जीवन की कथा का आलेखन किया है। डॉक्टर विजेंद्र नारायण सिंह के शब्दों में कहें तो इन्वर्टर कमापन, नच्यो बहुत गोपाल का उद्देश्य भारतीय समाज में सामंती दमन के निष्पट रूप को साक्षात्कार कराना है और उनके प्रति हमारे मन में नफरत और विरोध का तीखा बोध पैदा करना है। अपने इस संवेदनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने पखाना धोने वाले और टोकरी में मैला ढोने वाले भंगी समुदाय के जीवन का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण किया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ आलोचना उपन्यास अंक जनवरी जून 1983 पृष्ठ संख्या 32। 28 इदम् न मम मैत्रेयी पुष्पा 1994। इदम् न मम ग्रामीण आंचलिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक सार्थक और सफल उपन्यास है। 400 पृष्ठों के इस उपन्यास से गुजरना अपने आप में एक अनुभव संपन्नता से गुजरना है। जिस प्रकार मेघाड़ी के उपन्यासों में गुजरात का काठियावाड़ अंचल, पन्नालाल पटेल के उपन्यासों में उत्तर गुजरात का अंचल, विजय दान देया के कहानियों में राजस्थान और रेणु तथा नागार्जुन में बिहार के ग्रामीण अंचलों से हमारा परिचय होता है, ठीक उसी प्रकार मैत्रेयी पुष्पा की रचनाएं स्मृति दंस 1990, चिन्हार 1991, बेतवा बहती रही 1993, इदम् न मम 1994 में हमें विंध्य की उपत्यकाओं के जनजीवन का परिचय मिलता है। इसमें विंध्य के सोनपुरा, श्यामली और बेरगवा गांव के ग्रामीण जीवन से हमारा परिचय होता है। उपन्यास का समय आज़ादी के बाद का है, परंतु मैला अंचल आधा गांव की तरह आज़ादी के तुरंत बाद का नहीं। अब गांव में पंचायती राज स्थापित हो गया है, उसके प्रधान अब नए रूप में आ रहे हैं, परंतु उनके साथ ही ग्रामीण जीवन राजनीतिक चपेटे में आ रहा है। पृष्ठ संख्या 98। गांव में अब तमंचे निकलने लगे हैं और रतन यादव तथा राजू यादव जैसे लोग पिस्तौल की नोक पर अपने काम करवाते हैं। वकील जज सब उनके बस में हैं। तीन तीन औरतों का अपहरण करने वाले रतन यादव का एकमात्र उद्देश्य उन औरतों की संपत्ति को हथियाना मात्र होता है। इन्वर्टेड कॉमा अपन तीन विधवाओं की जमीन चाप बैठा है रतन यादव, किसी को भगाकर तो किसी को बहला फुसलाकर, और उससे भी बढ़कर है उसका बेटा राजू यादव। वह पट्टा पिस्तौल की नोक पर सारे काम करता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ इदम् न मम मैत्रेयी पुष्पा। चेंज उपन्यास की नायिका मंदा की माँ प्रेमा को भी रत्न यादव बहला फुसलाकर भगा ले गया था। वह प्रेमा का एक हथियार के रूप में प्रयोग करता है, परंतु प्रेमा जब इनकार कर देती है तब शुरू होता है यातनाओं का सिलसिला। अंततोगत्वा रत्न यादव प्रेमा को एक पुत्री की भेंट देकर अपने ममेरे भाई को सौंप देता है। उपन्यास का प्रारंभ एक खूनी संघर्ष से होता है। सोनपुरा के महेंद्र सिंह अपने गांव को सुखी संपन्न और आधुनिक बनाना चाहते हैं। गांव में अस्पताल बनवाने में उनकी मुख्य भूमिका है, परंतु ऐन उद्घाटन वाले दिन प्रतिगामी शक्तियों द्वारा जो संघर्ष होता है उसमें महेंद्र सिंह की हत्या हो जाती है। महेंद्र की माँ बहू अपनी पोती मंदाकिनी को लेकर अपने मायके के गांव श्यामली चली जाती है। महेंद्र की बीबी प्रेमा रत्न यादव के साथ चली जाती है और वहां से अपनी बेटी मंदा को पाने के लिए कचहरी में फरियाद करती है। बहू प्रेमा से घृणा करती है और मंदा पर उसकी परछाई भी पड़ने देना नहीं चाहती। बहू को डर है कि रत्न यादव के गुंडे मंदा को भी उठाकर ले जा सकते हैं। अंत में वह उसे लेकर श्यामली जाती है। वहां पर भी असुरक्षा के बढ़ने पर वह मंदा को ओरछा के एक जंगल में एक वीरान सी झाड़ी में ले जाती है। वहां से वह बिरगवा जाती है और बिरगवा से पुनः श्यामली आती है। श्यामली से 7 वर्षों बाद मंदा अपने गांव सोनपुरा लौटती है। इन संघर्षों में रच पच कर अब मंदा का एक नया ही रूप हमें देखने को मिलता है, जिसमें जीवट है, साहस है, महत्वाकांक्षा है और गजब का जुझारू व्यक्तित्व है। मंदा के व्यक्तित्व के संदर्भ में राजेंद्र यादव का कहना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मंदा एक अजीब निरीह, निष्कवच, निश्चल, संकल्प दृढ़ नारी का व्यक्तित्व लेकर उभरती है। उसकी लड़ाई दोहरी है, औरत होने की और वंचितों के अधिकार की। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ हंस जुलाई 1994 पृष्ठ संख्या 42। पैराग्राफ चेंज इदम् न मम उपन्यास का परिवेश विंध्य के ग्रामीण ज्वार का है। अंत में लेखिका ने छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसकी नायिका मंदाकिनी उर्फ मंदा केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है, परंतु रामायण और गीता उसे याद है। उसका बचपन का प्रेमी मकरंद डॉक्टरी पढ़ने इलाहाबाद जाता है, तो फिर आगामी अतीत के ब्रैकेट में कमलेश्वर कमल बोभा की भांति कभी नहीं लौटता। मकरंद एक लचीली रीढ़ का व्यक्ति है। एक तरफ मंदा की चोटी का लाल फीता अपने बक्से में छिपा कर रखता है, परंतु माँ बाप का विरोध नहीं कर सकता। उसमें स्वयं भी शहर का आकर्षण है। मंदा की उससे सगाई भी हो गई थी, परंतु वह सगाई टूट जाती है। मंदा कहीं अपने भीतर सोचती है कि उसके पिता के बनाए हुए अस्पताल को चलाने के लिए मकरंद जरूर आएगा। मकरंद तो नहीं आता, डॉक्टर इंद्रनील आता है। मंदा उसमें अपने पूर्व प्रेमी की छाया देखती है। उसका हृदय कुछ समय के लिए फिर छलक पड़ता है। पृष्ठ संख्या 99। परंतु अंत में उसका वह सपना भी पूरा नहीं होता। अस्पताल बंद हो जाता है। मंदा की माँ रत्न यादव के साथ चली गई, अतः उसकी दीदी उसे लेकर श्यामली चली जाती है। परंतु रत्न यादव का आतंक वहाँ भी पीछा करता है। मंदाकिनी का चरित्र बड़ा अजीब है। उसका मुंह बोला मामा उसके साथ बलात्कार करता है। उपन्यास के कथानक के दो वैचारिक आधार बिंदु हैं। पहला, जब तक मनुष्य आत्मरत रहता है अपने दुखों से नहीं उबर पाता, समष्टिगत प्रेम मानव को दुखों से बाहर खींचता है। दूसरा, अपने हिस्से की लड़ाई जब तक हम दूसरों से लड़वाते रहेंगे तब तक उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। इन दो संकल्पों के साथ मंदा अपने गांव सोनपुरा आती है और शोषितों और वंचितों के साथ जुड़ जाती है। वह स्वयं शोषितों की पीड़ा भी झेलती है और स्त्री होने की यातना भी सहती है। टूटती भी है मगर संभल जाती है। हिंदी के बहुत से मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की नायिकाएं जहां बलात्कार के कारण असाधारण हो जाती हैं, वहां मंदा उस घटना को अपने जीवन का एक अवांछित कोना समझकर झटक देती है। इसमें कुसुमा भाभी का भी सहयोग है। नारी जब तक आर्थिक दृष्टि से पर निर्भर और भावात्मक सत्ता में लीन रहेगी तब तक उसका शोषण जारी रहेगा, अतः मंदा इन दोनों से निजात पा लेती है। कुसुमा भाभी इस उपन्यास की एक और सशक्त नारी पात्र है। उनके पति यशपाल ने उन्हें छोड़ दिया है, परंतु वह जन्म से ही बीमार ऐसे दावजू ब्रैकेट में अमर सिंह से प्रेम करती है और उस प्रेम के फलस्वरूप उन्हें एक संतान भी होती है। विवाहिता होते हुए भी पराए पुरुष के साथ अपने संबंध को वह स्वीकार करती है। दादाजी कुसुमा भाभी की अवैध संतान को न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा भी देते हैं। इस प्रकार कुसुमा भाभी सामाजिक वर्णनाओं पर खुली चुनौती बनकर उभरती है। पैराग्राफ चेंज। मैत्रेयी पुष्पा की नारी विषयक अवधारणाएं इस चरित्र में साकार हुई हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर प्रभा खेतान का मंतव्य उल्लेखनीय होगा। इन्वर्टेड कमापन, मानवीय संबंधों के कुछ ऐसे नैसर्गिक शाश्वत मुद्दे हैं जिन पर अब तक स्त्री खामोश रही है। हाँ, डरते डरते ही सही, अब उसने बोलना शुरू किया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हंस, जून 1994, पृष्ठ संख्या 65। जहाँ तक नारी चित्रण का प्रश्न है, इसमें हमें तीन पीढ़ियों की नारियाँ मिलती हैं, बहू प्रेमा, मंदा और कुसुमा भाभी। बहू का अपना एक संसार है, अपनी मान्यताएं हैं। इसीलिए पुत्र महेंद्र की मृत्यु के उपरांत जब प्रेमा रत्न यादव के साथ भाग जाती है तो उसे कुलबोरन कहते हैं। बहू प्रेमा को फिर कभी स्वीकार नहीं कर पाती। एक बार जब वह आती है तो उसे द्वार से लौटा देती है। लेखिका बहू की कुंठाओं और दमित आकांक्षाओं को इसका कारण मानती हैं और बहुत खुलकर उसका विश्लेषण करती हैं। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। क्या पता बहू को यही दुख हो कि वे विधवापन के लिए बनाए गए निषेधों को सहती झेलती रहे। अम्मा ने नकार दिया। जिन दैहिक सुखों को बहू ने इच्छा या अनिच्छा से कुचला, उन्हीं को अम्मा ने अनिवार्य समझ लिया। उनका गम यह भी हो सकता है कि विधवा के चलते सामाजिक विधान की भागीदारी वह अकेली क्यों हुई। यही दंड उनकी बहू ने क्यों नहीं झेला। हवेली की मर्यादा की रक्षा में होम होने की सजा केवल उनके लिए और जायदाद का बंटवारा बराबर बराबर। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ इदम नममा मैत्रेयी पुष्पा। दूसरी पीढ़ी की नारी प्रेमा विधवापन की यातनाओं को भुगतने के लिए प्रस्तुत नहीं है। पृष्ठ संख्या 100। अतः दैहिक सुखों की लालसा में वह रत्न यादव से जुड़ती है, परंतु उससे उत्पन्न अपराध बोध से वह मुक्त नहीं हो पाती। जबकि मंदा और कुसुमा भाभी तीसरी पीढ़ी की नारियां हैं, जो दैहिक सुख के लिए भी एक पुरुष पर निर्भर रहना स्वीकार नहीं करती, बल्कि मंदा में उससे भी आगे की प्रक्रिया है। स्त्री जीवन में शरीर सुख ही सब कुछ नहीं होता। नारी चाहे तो संसार के इस खुले समरांगण में अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकती है। इस प्रकार मैत्रेयी पुष्पा कहीं भी फेमिनिस्ट होने का दावा करते हुए भी नारी सोच को एक कदम आगे बढ़ाती हैं। रचना सार्थक और सौंदर्य है।